गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं हरिवंश राय की लिखी कहानी अंतिम पड़ाव। पूरे वृंदावन में बादलों का एक भी टुकड़ा न था। सोना घोष अपनी झुकी हुई कमर के साथ सूरज की तेज धूप में चली जा रही थी भजनाश्रम की ओर, रुकते बैठते धीरे धीरे चलते। वह घड़ी भर के लिए किसी पेड़ की छांव में सांस लेने बैठ जाती तो उसके मन में आवाजें उठती, हे राधे, ये कौन सा दिन दिखाया तूने, अभी और कितना और कब तक चलना है इस काया के लिए। पर इन उठती हुई आवाजों का कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। उसके अपने ही ख्याल हवा में घूमते घूमते वापस लौटाते उसी के पास। वो क्या करे इन सवालों का, इन सवालों का कोई जवाब उसके पास तो नहीं था, लेकिन ये सवाल थे जो दिन में न जाने कितनी बार उसके जहन से टकराते, उससे पूछते रहते कि उसे और कितना चलना होगा और कब तक चलना होगा। पर इन सवालों का उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसका जी करता कि वह किसी पेड़ की छाया तले बैठ जाए और फिर वहां से कहीं न जाए। कब तक वो इस तरह रोज सूरज की तेज धूप से बचते बचाते चलती रहेगी, कब तक वह हाँफ हाँफ कर भजनाश्रम में पहुंचती रहेगी, कब तक दो मुट्ठी चावल के लिए वह इसी तरह भजनाश्रम में आती रहेगी। यही धीरे धीरे चलते चलते सोच रही थी कि पानूबाला की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा माई, ज़्यादा देर हो गई तो गेट बंद हो जाएगा। पानूबाला की आवाज़ सुनते ही सोना घोष की चाल थोड़ी तेज हो गई। भजनाश्रम का गेट बंद होने का मतलब उन्हें पता था। गेट बंद हो गया तो उसे टोकन नहीं मिलेगा और टोकन न मिलने का मतलब था चावल न मिलना, और तब यमुना जी का पानी पीकर ही उसे रात गुजारनी पड़ेगी। उसके पांवों में थोड़ी तेजी सी आ गई। एक वैभवपूर्ण इतिहास था सोना घोष का, जिसे वो कभी कभी याद करती थी, लेकिन अब उसे अपने उस इतिहास से कोई मोह नहीं था। उसका स्वामी, उसके माँ बाप सब धुंधले होकर गायब हो गए। जो कुछ उसने 30 सालों में सहेजा था सब खत्म हो गया। अब तो केवल तपते हुए दिन थे और तपती हुई रातें थीं। अपने स्वामी की मृत्यु के बाद वह घर से क्या निकाली गई, लोगों के जीवन से ही निकल गई। रिश्तेदारों के अनेक घर, भाई बहनों के अनेक घर, पर किसी ने भी मुड़कर उसकी ओर नहीं देखा। किसी का उसके प्रति कोई आकर्षण ही नहीं था, कोई मोह नहीं था। अब बस उसके मन में एक चाह सी रह गई थी कि जो कुछ आज है वह ठीक ठाक चलता रहे, कम से कम उसमें तो कोई रुकावट ना हो। भजनाश्रम से उसे रोज दो मुट्ठी चावल मिलता रहे, वह यमुना जी का पानी इसी तरह पीती रहे और वह अपनी कोठरी में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को चुपचाप पार कर ले। आज उसे देर हो गई थी। देरी का कारण एक छोटी सी झपकी थी। सोना घोष को भजनाश्रम में 4 बजे पहुंचना था और इस समय 4:15 बज रहे थे। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा माई, देर हो गई तो टोकन बाबू चला जाएगा। टोकन नहीं मिलेगा, पानूबाला ने कहा। चलती हूँ बेटा, उसने अस्फुट से स्वर में पानूबाला से कहा और अपनी वृद्ध काया को आगे बढ़ाने की हिम्मत जुटाने लगी। 70 वर्ष की उम्र रही होगी, झुकी हुई कमर और हड्डियों में सिर्फ खाल चिपकी सी रह गई है। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं जिनमें उसके संघर्ष थे, उसकी सफलताएं थीं, असफलताएं थीं। कभी अपने घर की रौनक रही होगी सोना घोष, अपने घर के केंद्र में रही होगी, पूरे घर को संभाले रखा होगा, पर आज एकदम अकेली है। ना कोई उनसे मिलने आता है, ना उन्हें किसी से मिलने की ख्वाहिश है। अब तो बस वह है, उसके साथ वाली माई पानूबाला है, भजन है, भजनाश्रम है, दो मुट्ठी चावल हैं, उसकी बीमारियां हैं, उसके दुख हैं, बड़ी बड़ी रातें हैं, बड़े बड़े दिन हैं, टूटे हुए छप्पर वाली उसकी कोठरी है, जहाँ रात की गर्म हवा उसे चैन नहीं लेने देती और दिन की लू उसे झुलसा देती है। सूरज अपने पूरे ताप के साथ अपनी किरणें पृथ्वी के इस छोटे से टुकड़े पर फेंक रहा था। गर्म हो रहा था वृंदावन उसके ताप से, झुलसा देने वाली धूप थी। परिंदे तक पेड़ों की छांव में दुबके हुए थे। जमीन आग उगल रही थी, पाँव में उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। माई, साथ चल रही माई का अस्फुट सा स्वर सोना घोष ने अपनी कानों के करीब महसूस किया। क्या है? उसने आंखों ही आंखों में पूछा। दीपांकर आया है कलकत्ता से मिलने। दीपांकर? उसने कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहा। कब कब आया है? उसके स्वर में उल्लास सा आ गया। आज ही आया है, पानुबाला ने खुश होकर उसे जानकारी दी। कहाँ है? उसका उल्लास और बढ़ गया। भजनाश्रम में राह देख रहा होगा तुम्हारी। किसने बताया तुमको? माई के चेहरे पर उमंग की रेखाएं उभर आई थीं। बाबू ने सुबह बताया था, शाम को भजनाश्रम में आने के लिए कहा है, पानुबाला ने बताया। न जाने कौन सा जादू इन शब्दों में था, माई का खून दौड़ने लगा। माई ने अपना पसीना अपनी मैली साड़ी से साफ किया और चाल में तेजी ले आई। चेहरे पर वात्सल्य की छाया आ गई। 12 बरस का रहा होगा दीपांकर, जब उसकी माँ छोड़कर चल बसी थी। कुछ समय बाद दीपांकर के पिता तपन की मृत्यु भी कारखाने में काम करते समय हो गई। परिवार में कोई नहीं बचा था जो दीपांकर की देखभाल करता, उसे बड़ा करता। दर दर की ठोकरें खाता था गांव में। सोना घोष ने उसे सहारा दिया, वक्त बेवक्त उसे खाना दे देती थी। पता नहीं कब दीपांकर ने उसी को अपनी माँ समझ लिया था, उसी ने दीपांकर को बड़ा किया था, 1000 दुख सहते हुए भी। दीपांकर जब बड़ा हो गया था तो चला गया कलकत्ता नौकरी के लिए। गांव में सोना घोष का भी कोई नहीं था। पहले स्वामी, फिर बहू, फिर बेटे के मरने के बाद उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दीपांकर के जाते ही वह अकेली रह गई। खेत जमीन सब साहूकार के पेट में समा गए। मिदनापुर में वह किसके सहारे रहती? दीपांकर के जाते ही सब कुछ खत्म हो गया था। किसी ने दया करके वृंदावन का रास्ता दिखा दिया और वह आ गई यहाँ, वृंदावन में भजन करती माइयों के बीच। जब वह यहाँ शुरू शुरू में आई तो दीपांकर हर साल आया करता था, पर धीरे धीरे उसका आना कम होता गया। भजनाश्रम में गूंजते ढोल मंजीरे खड़ताल की आवाजें दूर से ही सुनाई दे रही थीं। ज्यों ज्यों वह अपने लड़खड़ाते कदमों से भजनाश्रम के पास पहुंच रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे की आवाजें तेज होकर उसके दुखते कानों में पड़ रही थी। भजनाश्रम के द्वार पर उसकी आंखें दीपांकर घोष को ढूंढ रही थीं, लेकिन वहां सन्नाटा था, दीपांकर घोष कहीं नहीं था। भजनाश्रम की 2-3 माइयां वहां रखे कूलर से ठंडा पानी पी रही हैं और अपने ठंडे हाथ को सिर पर रख रही थीं, जो सूरज की तेज गर्मी को उस ठंडे पानी से चुनौती दे रहा था। बड़ा सा भजनाश्रम का अहाता था, हरे राधे हरे कृष्ण के भजन होते थे वहां। सैकड़ों माइयां थीं उस अहाते में। उनकी आंखों में भक्ति और उल्लास कम, बेचारगी और उदासी ज्यादा दिखाई देती थी। छोटे से अहाते में एक चलता फिरता बंगला था। माइयों का बेचैन सा दिल धड़कता था कि कहीं कुछ न हो जाए। परेशान और उदास चेहरे, उन चेहरों पर उम्र साफ पानी की तरह दिखाई देती थी। अपना घर, अपने बच्चों, अपने गांव, अतीत की स्मृतियों को संजोए वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी, पर अपने अतीत के प्रति आकर्षण भी और गुस्सा भी, नफरत भी और आक्रोश भी रह रह कर उनके मन में एक ही सवाल उठता था कि क्यों हुआ ऐसा उनके साथ? कृष्ण कन्हैया, तूने भी कुछ नहीं किया, तेरा ही आसरा था, क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? लड़का आया था, गेट के अंदर कदम रखते ही पानू बाला ने टोकन देने वाले बाबू से पूछा, ना कोई नहीं आया। कहकर बाबू ने उन दोनों को टोकन दे दिया और कहा, आज फिर देर हो गई। क्या करें बेटा, भरी दोपहरी में थोड़ी नींद आ गई थी, सोना घोष ने अपनी कांपती आवाज से स्पष्टीकरण दिया, गोया उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। पंडित देख लेगा तो नाराज होगा, जाओ अंदर जल्दी जाओ। पर सुबह तो तुम कह रहे थे कि लड़का शाम को आएगा, पानू बाला ने उसकी सुबह की बात दोहराते हुए कहा। हाँ शाम को 7 बजे आएगा, अभी तो अंदर जाओ, भजन शुरू हो चुका है, उस बाबू ने कहा। सोना घोष ने अपनी रबड़ की चप्पलें भजनाश्रम के बाहर फर्श पर उतारी। फर्श कम तवा ज्यादा था, आग बिखरी हुई थी फर्श पर। चप्पलें उतारकर सोना घोष भी उन भजन करती माइयों में शामिल हो गई। वहां सभी माइयां समूह में भजन गाती, पर सोना घोष उन भजनों को दोहरा ना पाती, चुपचाप होंठ हिला देती। राधे कृष्ण की मूर्तियों को वीरान आंखों से देखते हुए भजन करती हुई हर माई का चेहरा पतझड़ के पेड़ों की तरह लग रहा था। उन आंखों में जहां पहले सपने थे, आकांक्षाएं थीं, अब उन आंखों में सूनापन था। शाम 7 बजे भजन पूरा हो गया। सोना घोष जब चावल लेने के लिए बाबू के पास गई तो उसने बताया कि कोई लड़का उनसे मिलने आया है। दीपांकर, नाम गूंजा सोना घोष के जहन में। कहाँ है? उसके स्वर में उत्सुकता थी। वो देखो सामने खड़ा है, टोकन देने वाले बाबू ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा। सोना घोष ने सामने देखा, 25-30 साल का गोरा सा लड़का था। सुंदर सा चेहरा, काले बाल, भावपूर्ण आंखें, बड़े स्नेह से वह सोना घोष की तरफ देख रहा था। लो आ गया तुम्हारा पोता, जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पानू बाला ने माई का हाथ पकड़ते हुए कहा। दीपांकर ने आगे बढ़कर माई के पैर छुए। सोना घोष ने ढेरों आशीर्वाद दिए, बड़े स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बहुत दिल लगा दिए इस बार आने में, सोना घोष की आवाज में एक उलाहना भी था। हाँ अम्मा, इस बार बहुत दिन हो गए, और उसके स्वर में थोड़ा पश्चाताप। अच्छा किया तू आ गया, बहुत दिनों से तेरे ख्याल आ रहे थे। दीपांकर कुछ नहीं बोला, चुपचाप सोना घोष को देखता रहा। कुछ देर चुप रहकर उसने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब मेरी तबीयत का क्या है, अब तो चलने की तैयारी है, देखो कब तक राधा मैया यहाँ रहने देती हैं, पानू बाला ने बुझते स्वर में कहा। ऐसा क्यों कहती हो अम्मा? और क्या कहूँ बेटा, अब सब कुछ तो खत्म हो गया, इस तरह के दिन भी गुजारने पड़ेंगे, कभी सोचा ना था, कहते कहते उसकी आंखें डबडब आ गईं। दीपांकर चुप रहा, कुछ बोला नहीं। बहू कैसी है, क्या नाम है उसका? मैं तो नाम ही भूल गई, सोना घोष ने किसी अतीत को याद करते हुए कहा। तारा, तारा नाम है उसका, दीपांकर ने अपनी पत्नी का नाम बताया। हाँ तारा, सोना घोष के चेहरे पर उल्लास सा आ गया। कैसी है वो? ठीक है, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया। और बच्चे? वो भी ठीक हैं। उनकी बातों को बीच में टोकते हुए पानू बाला ने कहा, बहुत कष्ट है माई को, यहां से ले जाओ इन्हें अपने साथ, अब हम कहाँ जाएं, राधे कृष्ण को छोड़कर, यमुना जी को छोड़कर, अब यही है सब कुछ। सोना घोष ने दीपांकर को पानू बाला के बारे में बताया। दीपांकर ने पानू बाला को नमस्कार किया तो पानू बाला का गला भर आया। खुश रहो, उसने कहा। आप कब से हैं यहाँ? दीपांकर ने पानू बाला से पूछा। हम? पानू बाला ने हैरानी से पूछा। हाँ आप, दीपांकर ने उसकी ओर देखते हुए कहा। पानू बाला हैरान रह गई कि कोई उससे भी कुछ पूछ सकता है। हम तो बचपन से हैं यहाँ। बचपन से? दीपांकर ने कुछ हैरानी से कहा। हाँ, बचपन से, बचपन में ही विधवा हो गई, तब से है यहाँ। ओह, दीपांकर को कुछ कुछ समझ आया। कहाँ था घर? कलकत्ता में। तो फिर यहाँ कैसे? स्वामी के मरने के बाद बहुत काम करता था वहाँ, लेकिन स्वामी के मरने के बाद सब खत्म हो गया, सब को छोड़कर चली आई यहाँ। पानूबाला ने अपना थोड़ा सा अतीत बताया। कहाँ रहती हैं, इस भजनाश्रम में? दीपांकर ने पूछा। नहीं, किराए की कोठरी में माई के साथ, उसने बताया। उसके कटे वालों को देखकर दीपांकर ने पूछा, आपने बाल क्यों कटवाए? आश्रम के पंडित जी ने बाल कटवाने के लिए कहा था, उसने बताया। क्या कहा? यही कि बाल कटवा लो तभी भजन करने की इजाजत मिलेगी, बाल कटवाना पड़ा ना। पंडित ने ऐसा क्यों कहा? दीपांकर ने जानना चाहा। यहाँ वृंदावन में सब तरह के आदमी हैं, बालों से चेहरा सुंदर दिखता है, इसलिए पंडित ने बाल कटवाने के लिए कहा। अच्छा, दीपांकर को जानकर हैरानी हुई। सब राधे कृष्ण की मूर्तियों पर ही पैसा चढ़ाते हैं, यह नहीं कि कुछ पैसे हमें भी दे दें, कुछ चावल हमें भी दे जाएं, उसने अपनी यातना को दबे स्वर में बताया। दीपांकर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें भजन करने के लिए भरी दोपहरी में दो दो कोस से ना आना पड़े, हमारी कोठरी में ही हमें दो मुट्ठी चावल मिल जाया करे, उसने बहुत ही बोझिल मन से दीपांकर को अपने मन की बात बताई। हो तो बहुत कुछ सकता है, दीपांकर ने मन मन सोचा, पर करे कौन। अम्मा, ये लाया हूं तुम्हारे लिए, कहते हुए दीपांकर ने एक बैग सोना घोष को दिया। उसमें शायद कुछ कपड़े थे सोना घोष के लिए, दो चादरें थीं, कुछ फल थे और शायद कुछ और भी। सोना घोष खुश हो गई उस बैग को लेकर। उसे लगा कि आज भी उसका कोई है, उसका अपना, जो उसके बारे में सोचता है। बहुत खुशकिस्मत हो माई कि तुम्हारा दीपांकर तुम्हारे लिए कुछ लाया है, पानूबाला ने माई की ओर देखते हुए कहा। पर दीपांकर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह क्या करे जिससे उनके कष्ट दूर हो जाएं? वह कर भी क्या सकता है? वह खुद तो यहाँ रहता नहीं है। जब इनके घर वालों ने ही इनके कष्टों से मुंह फेर लिया तो भजनाश्रम के लोग क्या करें? उसे चुप देखकर पानूबाला ने कहा, कुछ नहीं कर सकते तो हमारा एक छोटा सा काम कर दो। काम? कौन सा काम? दीपांकर ने हैरानी से पूछा। अगली बार आओ तो हमारे लिए एक पंखा लेते आना। पंखा? हाँ, पंखा। यहाँ खूब गर्मी लगती है, पानूबाला ने बताया। अच्छा, लेता आऊंगा, दीपांकर ने हामी भरी। रजाई? हाँ, रजाई भी, यहाँ सर्दी भी खूब लगती है। अच्छा, वो भी लेता आऊंगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी कोठरी तक छोड़ दूं, दीपांकर ने विदा लेते हुए सोना घोष से कहा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम आ गए, बहुत अच्छा किया, तुमको देखकर बहुत अच्छा लगा, तुम खुश रहो, सोना घोष ने आशीर्वाद देते हुए कहा। दीपांकर चलते समय सोना घोष के पैर छूने लगा तो उसका गला भर आया, बड़ी आंखों से आंसू टपकने लगे अविरल। आंखों से बहते आंसुओं को पोछते हुए उसने रुंधे गले से कहा, अगली बार बहू और बेटे को भी लेते आना, बहुत दिन हो गए उन्हें देखे, अब पता नहीं और कितने दिन चले, पता नहीं यमुना मैया कब बुला ले अपने पास, कहते कहते वह रो पड़ी। उसने दीपांकर के आगे सिर झुकाकर झुर्रियों भरे दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, अब की इतनी देर मत करना, जल्दी आना, तुम्हें देखने के लिए जिंदा रहूंगी, राधे कृष्ण तब तक सांसें चलाएंगे मेरी। दीपांकर कुछ नहीं बोला। उसे चुप देख पानूबाला ने कहा, चल माई, ज्यादा देर हो गई तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा ज्यादा हो गया तो ठीक से दिखाई नहीं देगा और फिर दो कोस का सफर तय करके वापस अपनी कोठरी में भी पहुंचना है। पानूबाला से यह सुनते ही सोना घोष चल पड़ी अपनी कोठरी की तरफ, दीपांकर का थैला लिए। दीपांकर उसे कोठरी की तरफ जाते तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। शाम ढल चुकी थी, सूरज यमुना जी में डूब चुका था। रात आने से पहले का अंधेरा था जो थोड़ी ही देर में गहरा हो जाएगा। भजनाश्रम के बाहर सड़क पर निकलकर दीपांकर ने देखा कि इस अंधेरे में भी वृंदावन के मंदिरों के बुर्ज चमक रहे थे, सोना घोष और पानुबाला के दुखों से ऊपर उठकर। अभी आप सुन रहे थे हरिवंश राय की लिखी कहानी अंतिम पड़ाव। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया पूजा श्रीवास्तव ने।